आरवी को इस तरह हैरान परेशान देखकर शान ने आगे कहना जारी किया, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जिसे देखकर तुम्हें खुशी तो जरूर होगी, पर उस सरप्राइज को देखने के लिए तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा और मेरी हर बात भी बिना कोई सवाल किए मानना होगा। इस बात शान की आवाज में सॉफ्टनेस थी। कितने वक्त बाद शान ने उससे इतने आराम से बात किया था, पर शान का रवैया अचानक उसके लिए बदल गया, ये देखकर बेहद हैरानी हुई। एक बार फिर मन में सवालों का ज्वार भाटा उठा और उसने तुरंत ही गंभीरता से उससे सवाल किया, कैसा सरप्राइज और कहाँ लेकर जाना चाहते हैं आप मुझे? हमारा रिश्ता अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है और आप तो मुझे अपनी पत्नी मानते ही नहीं, बल्कि मुझसे बेइंतहा नफरत करते हैं, फिर मुझे क्यों अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहते हैं? उसके सवाल जायज ही थे। अचानक शान उसको अपने साथ बाहर लेकर जाने की बात कर रहा था, जो उसे हजम नहीं हो रहा था। आरवी का सवाल सुनकर शान के भाव एकदम से सख्त हो गए। वो गुस्से से आरवी को घूरने लगा। ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जा रहा है बस उतना सुनो और चिंता मत करो। आज जो सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर ऐसा तब होगा जब तुम खामोशी से मेरी हर बात सुनोगी और मानोगी। अभी तो मैं तुम्हें प्यार से बता रहा हूँ कि मेरे साथ चलना है, तो तैयार हो जाओ। अगर सीधे से मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें उठाकर अपने साथ लेकर जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तुम भी बहुत ही अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसलिए अगर चाहती हो कि तुम्हें मेरा गुस्सा और नफरत ना झेलना पड़े, चुपचाप तैयार होकर 5 मिनट के अंदर नीचे पहुँचो। इतना कहकर शान तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया और आरवी उलझी निगाहों से बस उसे जाते हुए देखती रही। उसका कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसे शान की नफरत की वजह जाननी थी, इसलिए उसने बेमन से अपने कपड़े बदले, बालों को ठीक किया, रूम से बाहर निकल गई। जितनी देर में आरवी रेडी हुई, शान जाकर सुभाष जी, अर्पिता जी और अंशु से मिलाया। उसने उनसे आरवी को बाहर लेकर जाने की बात भी कर ली और उसकी बात सुनकर दोनों बस एक दूसरे को ही देखते रह गए। शान अंशु को समझाते हुए रूम से बाहर निकल गया। अचानक शान के मुंह से आरवी को बाहर लेकर जाने वाली बात सुनकर अर्पिता जी और सुभाष जी दोनों ही कुछ परेशान से हो गए, पर आरवी पत्नी थी शान की तो उसे रोक भी नहीं सके। आरवी सीढ़ियों से उतर रही थी तभी उसकी नज़र हॉल में मौजूद शान पर पड़ी, जिसकी गोद में अंशिका थी और साथ ही अर्पिता जी और सुभाष जी भी थे। वो तो खुद उलझी हुई थी तो उनसे क्या ही कहती, इसलिए नीचे पहुंचकर वो अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। शान अंशिका को सब समझा चुका था। उसने आरवी के पास जाकर उसके दुपट्टे को पकड़कर खींचा तो आरवी ने पलके उठाकर उसे देखा, फिर उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। अंशु अपनी छोटी छोटी नीली नीली आंखों को टिमटिमाते हुए उसे देख रही थी। आरवी ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा, जब तक मम्मा वापस नहीं आ जाती अपना और दादू का ख्याल रखिएगा, शरारत करके बड़ी दादी को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिएगा, एकदम गुड गर्ल बनकर रहिएगा तो मम्मा जल्दी वापस आपके पास आ जाएंगी। मम्मा बेबी को सब पता है, डैडी ने बेबी को सब समझा दिया, आप डैडी के साथ जाइए, अंशु एकदम गुड गर्ल बन जाएगी, किसी को भी परेशान नहीं करेगी, बस आप जल्दी आ जाइएगा, बेबी को आपके बिना अच्छा नहीं लगता। अंशु ने इतने प्यार से कहा कि आरवी के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। शान से जुड़े इस रिश्ते से उसे चाहे जितना दर्द मिला हो, पर पहले दिन से अंशिका ने उस पर दिल से अपने प्यार को न्यौछावर किया था। शायद यही वो कड़ी थी जिसकी वजह से आज भी ये रिश्ता टिका हुआ था, और वही वो वजह थी जिसके कारण इतने गम में भी आरवी पर भर को ही सही पर मुस्कुरा देती थी। आरवी ने उसकी बात पर हामी भरते हुए प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर सुभाष जी और अर्पिता जी से इजाजत ली तो पिछले कुछ दिनों का शान का आरवी के प्रति रवैया याद करते हुए दोनों ने उसे अपना ध्यान रखने को कह दिया। आरवी अभी उनसे बात कर ही रही थी कि अचानक ही किसी ने उसका हाथ थामकर उसे खींचना शुरू कर दिया। आरवी और बाकी दोनों ने भी चौंकते हुए निगाहें घुमाकर देखा तो शान आरवी का हाथ थामे उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। एक बार फिर उसका रूखा व्यवहार आरवी की आंखों को नम कर गया। उसने अपनी निगाहें झुका लिया और खामोशी से उसके साथ चलने लगी। शान ने उसे पैसेंजर सीट पर बिठाया और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसने कार स्टार्ट कर दी। आरवी खामोशी से बैठी बस शान के चेहरे को देखी जा रही थी, शायद उसके भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर शान के चेहरे पर हमेशा वाली कोल्डनेस कायम थी। उसने तो एक बार भी आरवी की तरफ निगाहें नहीं घुमाई। करीब आधे पौने घंटे की ड्राइविंग के बाद शान ने मुंबई से नामी फैशन हाउस के सामने अपनी कार रोकी और आरवी के साथ अंदर चला गया। जैसा ही आरवी को उसने कहा था वो एकदम खामोश थी, पर बहुत से सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। शान के साथ किसी लड़की को देखकर वहां काम करते सभी एम्प्लॉय उन्हें ही देखने लगे थे। कुछ ही देर बाद शान आरवी के साथ एक चैम्बर में एंटर हुआ। इसके साथ ही उसके कानों में एक मीठी सी आवाज पड़ी, ओ तो तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आवाज़ सुनकर शान और आरवी दोनों ने निगाहें आवाज़ की दिशा में घुमाई तो सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। शान ने उसे देखा पर उसके भाव कुछ खास नहीं बदले। उसने आगे बढ़ते हुए गंभीर लहजे में उससे सवाल किया, ऐश्वर्या जो काम तुम्हें कहा था वो हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या ही थी।
शान का सवाल सुनकर ऐश्वर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम कुछ कहो और वो ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कहने पर मैंने अपना बेस्ट पार्टी कलेक्शन निकलवा दिया है, चलो मैं दिखाती हूँ, पर पहले तुम जरा अपनी ब्यूटीफुल वाइफ से मेरी जान पहचान तो करवा दो। शान के भाव एकदम से गहरे हो गए, पर अगले ही पल एकदम सामान्य हो गया। उसने बिना किसी भाव के आरवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, शी इज माई वाइफ आरवी, नाइस नेम। अब आगे का काम मैं खुद कर लूंगी, तुम्हें जरा भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, ऐश्वर्या ने मुस्कुराकर कहा और आरवी की तरफ बढ़ गई। आरवी अब भी परेशान सी कभी शान तो कभी ऐश्वर्या को देखे जा रही थी। ऐश्वर्या उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोली, हाय, आई एम ऐश्वर्या, बट यू कैन कॉल मी ऐश, तुम्हारे पति की पुरानी फ्रेंड और फिलहाल उनकी खास डिजाइनर, जिसके सर पर उनसे हर प्रोजेक्ट के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने की जिम्मेदारी रहती है और जिसे आज उसने तुम्हारे लिए बड़े वक्त बाद याद किया है। आरवी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसने एक नजर शान को देखा। ठीक उसी वक्त शान की निगाहें भी उसकी तरफ घूम गई, पर जैसे ही दोनों की निगाहें टकराई, शान ने तुरंत ही बेरुखी से अपना चेहरा घुमा लिया। आरवी के चेहरे पर दर्द की लहर आकर गुजर गई, पर उस दर्द को उसने अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लिया और ऐश्वर्या से हाथ मिलाते हुए बोली, हाय, चलो मैं तुम्हें ड्रेसेस दिखाती हूँ, वैसे तो सब एक से बढ़कर एक है, फिर भी कहना चाहूंगी कि अगर कोई कमी दिखे तो बेझिझक मुझे बता देना और उनमें से जो भी तुम्हें पसंद आई ले लेना। पेमेंट की चिंता मत करना, वो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड की जेब से निकाल ही लूंगी। उसकी बात सुनकर आरवी असमंजस भरी निगाहों से उसे देखने लगी। वहीं ऐश्वर्या ने शैतानी मुस्कान लबों पर सजाए शान को देखा, फिर आरवी को वहां से लेकर चली गई। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े से हॉल में थे, जहां हर तरफ एक से बढ़कर एक पार्टी वेयर ड्रेसेस नजर आ रहे थे। अलग अलग टाइप के गाउन थे। आरवी तो आंखें भाड़े चारों तरफ देख रही थी, वहीं शान दूसरे तरफ लगे मेन कलेक्शन से अपने लिए पार्टी के लिए आउटफिट सेलेक्ट कर रहा था।
ऐश्वर्या आरवी को एक से बढ़कर एक गाउन दिखा रही थी, पर आरवी सब पर इनकार में सर हिला देती। एक तो बेचारी ने पहले इतने महंगे महंगे कपड़े देखे नहीं, उस पर सबके सब लगभग लगभग बदन दिखाने का काम कर रहे थे, जिस वजह से आपकी को घबराहट के मारे पसीना आने लगा था। इस दौरान वो बहुत बार बचाव के लिए शान को देख चुकी थी, पर वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और ऐश्वर्या अपने में ही मग्न थी। कुछ आधे पौने घंटे बाद ऐश्वर्या ने आरवी की तरफ घूमते हुए कहा, तो तुम्हें इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया? आरवी ने तुरंत ही इनकार में सर हिला दिया और शान को देखते हुए बोली, मैं ये सब नहीं पहनती, मुझे नहीं जाना कहीं, आप मुझे वापस घर छोड़ दीजिए। शान के कानों में जैसे ही उसके कहे शब्द पड़े, उसके गुस्से भरी आंखें आरवी के तरफ घूम गई। आरवी समझ गई कि उसकी बात शान को पसंद नहीं आई और वो इस मुसीबत से किसी भी सूरत में बच नहीं सकती, तो वो दोबारा उन ड्रेसेस को देखने लगी। कुछ देर की मेहनत के बाद अचानक ही उसकी नज़र एकदम साइड में टंगी ड्रेस पर पड़ी और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत ही उस दिशा में इशारा करते हुए कहा, वो वाली ड्रेस दिखाइए मुझे। ऐश्वर्या ने उसके इशारे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर वो ड्रेस लाकर उसे दे दी। आरवी ने उसे अच्छे से देखा, वो ब्लैक कलर का इवनिंग गाउन था। गाउन बोट नेक था, फुल स्लीव्स के साथ। वो नेक लेंथ का घेरदार गाउन, जो ऊपर से टाइट और नीचे जाकर फैला हुआ था, काफी सुंदर लग रहा था। उसके साथ जो दुपट्टा था, उसमें भी स्टोन का बारीक वर्क हो रखा था, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। आरवी के लिए वो गाउन लॉन्ग फ्रॉक सूट जैसा ही था, इसलिए उसने उसे ही लेने का फैसला किया। पर जब उसने उसका प्राइस देखा तो उसका सर चकरा गया। 2 लाख की ड्रेस थी वो। एक पल में ही आरवी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो आंखें फाड़े अपने हाथ में पकड़े उस ड्रेस को देख रही थी। तभी उसके कानों में ऐश्वर्या की आवाज पड़ी, काफी अच्छी चॉइस है तुम्हारी, अभी तक ये मार्केट में भी नहीं उतरा है, मैंने पूरे 6 महीने लगाए हैं इसके पीछे, तब जाकर ये मास्टरपीस तैयार हुआ है, और ये ड्रेस तुम पर काफी खिलेगी, मानो तुम्हारे लिए ही बनी हो, और तुम्हें पसंद भी आ गई तो मैं तुम्हारे लिए इसे पैक करवा देती हूँ। नहीं, ऐश्वर्या के चुप होते ही 2 आवाज एक साथ ही वहां गूंज उठी। ऐश्वर्या ने चौंकते हुए देखा तो वहीं शान और आरवी भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि दोनों ने ही एक साथ ड्रेस के लिए इनकार कर दिया था। शान ने एक सेकंड के लिए आरवी और देखा, फिर ऐश्वर्या को देखते हुए गंभीरता से बोला, आज के ओकेजन के हिसाब से ये ड्रेस कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इसे पैक करने की जरूरत नहीं है, तुम उस ड्रेस को पैक करवा दो। उसने उंगली से एक दिशा में इशारा किया, जिस पर ऐश्वर्या के साथ साथ आरवी की निगाहें भी उस दिशा में घूम गई। वहां सामने एक फीमेल मैनिकिन रखी हुई थी और उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी, शान का इशारा उसी की तरफ था, जिसे देखते ही आरवी के चेहरे का रंग उड़ गया। टू बी कंटिन्यूड।